मेरे घनिष्ठ मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 23 जुलाई 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आज अपनी बात की शुरुआत करूं, मेरी एक रिक्वेस्ट है, और मेरी यह रिक्वेस्ट है मेरे ऑनलाइन के पेड स्टूडेंट्स से, ऑनलाइन के पेड स्टूडेंट्स और उन स्टूडेंट्स से जो इस साल जनवरी से पहले पहले एकेडमी फॉर एक्सीलेंस के स्टूडेंट बन चुके हैं, यानी कि यूं कह लीजिए कि लेक्चर सुनते हुए, यानी कि जो ऑनलाइन पेड जो उनको लेक्चर्स मिलते हैं, लगभग 6 महीने हो चुके हैं। और उनमें हो सकता है कि कुछ को बहुत कम ही समय मिला हो, जैसे कि अगर किसी ने 2 जनवरी को कराया है तो वो उसको थोड़ा सा समय कम मिला होगा अपेक्षाकृत उसके जो पिछले साल जुलाई या अगस्त में करा चुका है। लेकिन एक माइलस्टोन मैंने रखा है, जनवरी 2020 तक जो अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है। और रिक्वेस्ट कुल मिलाकर यह है कि अभी तक के लेक्चर्स सुनने के बाद जो आपके अपने एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो अनुभव रहे हैं, वो आप मेरे पास लिख कर भेजें। दोस्तों, जब मैं अनुभव की बात कर रहा हूं तो मैं इमोशनल बात नहीं कर रहा हूं, मैं तार्किक बात कर रहा हूं। ये नहीं कि लेक्चर बहुत अच्छे लगे, लेक्चर सामान्य थे, या मजा नहीं आ रहा है, या खूब मजा आ रहा है, या खूब समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, नहीं। आप तथ्य पूर्ण तरीके से अपनी बात कहें। अगर अच्छे लगे तो क्यों लगे, नहीं लगे तो क्यों नहीं लगे, अगर बहुत अच्छे लगे तो क्यों बहुत अच्छे लगे, आप अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो भी हो, आप यूं कह लीजिए कि एक आलोचनात्मक परीक्षण, जिसे हम UPSC की लैंग्वेज में कहें तो कहना पड़ेगा आलोचनात्मक परीक्षण, वो आप में से जो भी, जिन्हें भी ये लगता है कि सर ने रिक्वेस्ट की है और हमें अपना कुछ समय इसके लिए देना चाहिए, वो दोस्तों जरूर करें। मैं बहुत ध्यान से आप लोगों की प्रतिक्रियाओं को पढ़ूंगा और फिर डेफिनेटली इससे आगे के लिए बातें बहुत इम्प्रूव होती हैं, चीज़ें बदलती हैं, और हम सबको मिलकर के बेहतरी के लिए ही काम करना है। आप सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं बेहतरी के लिए, और डेफिनेटली हम लोग भी जो एकेडमी के माध्यम से ये काम कर रहे हैं वो आप लोगों की बेहतरी में योगदान के लिए ही कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी बात पर थोड़ा सा गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ विचार करें। दोस्तों, आज मुख्य विषय के तहत मैं भारत और यूरोपीय संघ, इस टॉपिक पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन पहले जो 2 घटनाएं हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जो एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, जिसे अखबारों में आज उतनी जगह नहीं मिली है, वो है गुजरात में जो हमारा काकरा पार परमाणु संयंत्र है, उसकी जो तीसरी यूनिट है, आप कह लीजिए उसकी शुरुआत हो जानी। इसके बारे में जो थोड़ी सी 2-3 जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके दिमाग में दर्ज होनी चाहिए प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से, वो ये है दोस्तों कि इसकी खासियत ये है इस तीसरे संयंत्र की कि ये पूरी तरह से स्वदेशी है, इंडिजीनियस है, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो मेक इन इंडिया की शुरुआत की है, ये उसका बहुत ही खूबसूरत प्रमाण है। और आप देखिए, क्योंकि जो परमाणु संयंत्र है वो बहुत हाई टेक्नोलॉजी के डिमांड करते हैं, इसका मतलब है कि भारत ने इसमें भी काफी दक्षता हासिल कर ली है मेक इन इंडिया। 700 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है, और यूं कह लीजिए कि अभी तक का ये हमारा सबसे बड़ा रिएक्टर है, और चौथा अभी और बनना है जिसके साथ 2021 तक वो पूरा हो जाए। दोस्तों, ये जो स्थान है ये ब्यारा नगर के पास है, आप यूं कह लीजिए कि एक ताप्ती नदी के तट पर है, सूरत से थोड़ी सी ये दूर पड़ेगा, 80-100 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन इससे पहले, जैसे मैंने कहा कि ये तीसरा संयंत्र है, तो फिर पहला और दूसरे कौन से हैं? तो जो पहला संयंत्र है 220 मेगावाट का, वो 1993 में शुरू हो चुका है, और जो दूसरा है वो 1995 में शुरू हो चुका है, और ये तीसरा संयंत्र है। तो बस इतनी थोड़ी सी जानकारी आपको मुझे लगता है कि होनी ही चाहिए। फ्रेंड्स, आज के अखबारों में एक न्यूज मुझे पढ़ने को मिली है और मुझे लगा कि आप लोगों के सामने मैं उसे रखूं, खासकर इसमें थोड़े से तथ्य हैं। और तथ्य यह है कि चीन ने एक आदेश जारी किया है, उस आदेश में ये कहा गया है कि जो ईसाई हैं, जो क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन जो ईसाई धर्म को मानते हैं, वो अपने चर्चों से क्रॉस की मूर्तियां हटा दें, क्रॉस होता है ना ईसा मसीह का जो एक सिंबल होता है क्रॉस, उसे हटा दें। साथ ही साथ वो अपने घर से भी ईसा मसीह की जो तस्वीरें लगाते हैं वो हटा दें। उसकी जगह पर वो क्या करें, उसकी जगह पर वो जो वहां कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओ से तुंग रहे हैं, नाम आपने जरूर सुना होगा, उनकी तस्वीर लगाएं, और अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनकी तस्वीर लगाएं, ये उनका आदेश है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं दोस्तों, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब हम भारत और चीन की तुलना करते हैं उपलब्धियों के मामले में, नीतियों के मामले में, तो हमारे दिमाग में ये तथ्य बिल्कुल रहना ही चाहिए कि जो चीन है वो कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां डेमोक्रेसी नहीं है, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री। आपको लगता है कि क्या भारत इस तरह का आदेश जारी कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि हम एक सेक्युलर स्टेट है। यहां तक कि अगर हम आदेश जारी कर भी दें तो हम मनवा नहीं सकते, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। लेकिन वहां वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से आप यूं कह लीजिए कि कम्युनिस्ट शासन होने का मतलब है एक प्रकार के अलग किस्म की तानाशाही ही। तो इसीलिए जब भारत और चीन की हम समीक्षा करें तो जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है दोनों का, और आप यूं कह लीजिए कि दोनों के पॉलिटिकल सिस्टम के जो मुंह है एक दूसरे के बिल्कुल विरोध में है, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें थोड़ा बहुत ही फर्क है, जैसे कि भारत और अमेरिका में आप कह लीजिए कि दोनों डेमोक्रेसी है लेकिन थोड़ा सा तो फर्क है, इस तरह का फर्क नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है, और ये फर्क आपके दिमाग में हमेशा मौजूद रहना चाहिए। दोस्तों आइए अब मैं आज के मुख्य विषय पर आता हूं, और मुख्य विषय है यूरोपीय संघ और भारत, या यूं कह लीजिए भारत और यूरोपीय संघ। आपको शायद ध्यान होगा कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 15वां सम्मेलन हुआ था भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच, जो वर्चुअल मीटिंग थी बेसिकली, उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया था, उस समय मैंने आप सबसे कहा था कि यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आपको तैयारी करनी चाहिए, और मैंने उस समय यूरोपियन यूनियन के बारे में थोड़ी सी परिचयात्मक जानकारी आपको दी थी, बहुत ही थोड़ी सी जानकारी दी थी, मैं अब उसे यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल ये सजेशन दे रहा हूँ कि बेहतर होगा कि आप यूरोपियन यूनियन के बारे में थोड़ा सा जान लें, कब बना, क्यों बना, कितने देश हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा जरूर समझ लें, क्योंकि उसको समझने के बाद ही आप मेरी बातों को जो मैं अब कहने जा रहा हूं उसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल छपा है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, वो मैं आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूं ताकि लिखित रूप में भी आप इसे अच्छे से तैयार कर सकें। हाँ, ये बात जरूर है कि ये जो टॉपिक है इसका संबंध प्री एग्जामिनेशन से उतना नहीं है जितना कि मेन एग्जामिनेशन से है। दोस्तों इसमें बहुत अच्छे तरीके से इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि वे कौन से पांच क्षेत्र हैं या पांच बिंदु हैं जिसमें भारत और यूरोपियन यूनियन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी साझेदारी कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप से बताया गया है। खासकर मैं इस पर बात इसलिए कर रहा हूं ताकि आप जब आर्टिकल्स पढ़ते हैं अखबारों से या किताबों से ही कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो आप में ये कैपेसिटी डेवलप हो सके कि इसमें कौन सी चीज आपके काम की है, कौन कौन सी चीज आपके काम की है और उन्हें आपको कैसे नोट करना है। जब भी आप इस तरह के आर्टिकल्स पढ़ें तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उन्हें पॉइंट्स के जरिए नोट करें 1, 2, 3, 4 तो शायद वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उससे हमारे दिमाग में स्पष्टता बनी रहती है। इसमें भी बकायदे पांच बिंदु दिए हुए हैं, बकायदे लिख करके दिए हुए कि पांच कारण, और उस पांच कारण के आप सब हेडिंग नोट कर लीजिए कि पहला कारण क्या है, दूसरा कारण आर्थिक है, तीसरा कारण इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी है, चौथा कारण फलाना है, पांचवां कारण ये है, तो वो आपकी सब हेडिंग बन जाती है। ठीक है, सब हेडिंग बनाने के बाद फिर उस हेडिंग के तहत और कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं आप उन्हें एक एक लाइन में चाहे तो नोट कर लें, चाहे तो एक एक शब्द में भी आप नोट कर सकते हैं, और इस तरह से आपका एक छोटा सा नोट तैयार हो जाएगा इस टॉपिक पर। अगर आप थोड़े से और सतर्क हैं और बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप एक नोट बना करके, नोट में जानबूझ करके कह रहा हूं, टिप्पणी जैसा तैयार करके और उस पृष्ठ के साथ आप इस आर्टिकल को स्टेपल कर दें, स्टेपल कर देने से होगा ये कि मान लीजिए कि कभी अब जब आप उस नोट को पढ़ेंगे तो हो सकता है कि चीजें कुछ मिस हो जाएं, उस समय तो आपको लग रहा था कि याद रह जाएंगी बातें लेकिन बाद में भूल गए हैं, तो वो जो आर्टिकल है, जो मेन आर्टिकल है, वो आपकी मदद कर देगा। ध्यान रखिए कि ऐसा आपको सबके साथ नहीं करना है। सबके साथ करेंगे तो आप ये मान करके चलिए कि आप किसी के साथ भी न्याय नहीं कर पाएंगे। उन आर्टिकल्स के साथ ऐसा करना है जिन्हें आप बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर चाहे वो प्री एग्जामिनेशन हो चाहे वो मेन एग्जामिनेशन हो। जैसे मैंने अभी जो काकरा पार के बारे में बताया है, और आप देखिए कि उसके बारे में थोड़ा सा मैंने पीछे बैकग्राउंड भी बताने की आपको कोशिश की है, तो वो स्वाभाविक है कि वो प्री एग्जामिनेशन का पॉइंट है। प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से मैंने बताया है। हाँ, ये जरूर है कि मेक इन इंडिया के तहत अगर आप कुछ लिख रहे हैं, कोई आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो उसमें इसका उल्लेख जरूर होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप इसका उल्लेख करेंगे एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप बहुत अपडेटेड हैं, आपको बिल्कुल लेटेस्ट जानकारियां हैं, और जो जानकारियां आपके पास हैं आप उनका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो पांच कारण उन्होंने बताए हैं, देखिए इसमें बहुत तेजी, बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, अब चूंकि समय कम है तो मुझे बहुत तेजी से बताना पड़ेगा। पहला कारण है भू रणनीतिक, यानी कि जो जियो पॉलिटिकल और जो सिचुएशन है भारत की और ईयू की, यूरोपियन यूनियन की, और साथ ही साथ जो हमारे दूसरे देश हैं, खासकर चाइना का इसमें उल्लेख है, उसको देखते हुए। दूसरा आर्थिक कारण दिया हुआ है। तीसरा ये दिया है कि भारत को इनोवेशन चाहिए और टेक्नोलॉजी चाहिए तो उनको वहां से काफी मदद मिल सकती है। चौथा कारण सिक्योरिटी को लेकर के है, सुरक्षा को लेकर के है, खासकर चीन को की चर्चा इसमें की गई है, फिर जो इस तरह से आतंकवाद बढ़ रहा है उसकी भी चर्चा है। और इसके बाद फिर लगातार जो आप यूं कह लीजिए कि जो पांचवा जो कारण है कि भारत और जो यूरोपियन यूनियन है इनके जो वैल्यूज हैं वो लगभग लगभग एक से हैं। जैसे दोनों देशों में डेमोक्रेसी है, दोनों देशों में अनेकता है, पारदर्शिता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति सम्मान की भावनाएं हैं, तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं भारत और यूरोपियन यूनियन के देशों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। ये पांच बिंदु इसमें दिए गए हैं और बहुत ही खूबसूरत बिंदु हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर एक दो बहुत अच्छे आर्टिकल्स मिल जाते हैं, एक दो बहुत अच्छा चैप्टर मिल जाता है, तो अपने आप में वो पर्याप्त होता है। हाँ, बाद में अगर उस चैप्टर से संबंधित कोई नई घटना घटित हो रही हो तो आप उसी में उसे और ऐड कर दीजिए, आपका वो कंप्लीट हो गया। ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत होती नहीं है। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में आज बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं। रोहित साहू झांसी उत्तर प्रदेश से, अनूप राज चांपा छत्तीसगढ़ से, मनप्रीत सिंह सार्दुलगढ़ पंजाब से, और चिराग ताम्रकर, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।